જાન્યુઆરી 1994 માં શ્રી સમયસર ગાથા 246 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું દેવલાલીમાં પ્રવચન, સળંગ પ્રવચન નંબર 41, મૂળ કેસેટમાં ડિસ્ટર્બન્સ છે.
ટીકા સમાપ્ત કરતે હોય કે ભગવાન અમરચંદ્ર આચાર્ય આખરી એક પછી રચના કરતા હૈ. સંસ્કૃત ભાષામાં જો ટીકા હોઈ હૈ પદ્ધતિ હૈ કે જબ પૂર્ણ કરતે હૈ તો ઇતિ કહેતે હૈ. ઇતિ હો ગયા, ઇસકા મને પૂર્ણ હો ગયા. કિસી કો બાત પૂરી કરને કે લિયે ભી એસા બોલા જાતા હૈ, અબ આપકી બાત કા ઇતિ કરો. લંબી લંબી કોઈ કરતે હૈ ઉસકો પૂરા કરના હૈ તો બોલે કે ઇતિ કર દો. અબ તો યહાં ઇસી શબ્દ સે પદ્ધતિ શરૂઆત હૈ. ઇતિ ઇદમ આત્મના તત્વમ જ્ઞાન માત્રમ અવસ્થિતમ અખંડમ એકમ અચલમ સ્વસંવેદ્યમ અબાધિતમ. યે સારા સંસ્કાર પૂર્ણ કરતે હુએ આત્મા કા તત્વ કો જ્ઞાન માત્ર રૂપ સે અવસ્થિત કિયા હૈ યા વ્યવસ્થિત રૂપ સે ખા ગયા હૈ. કૈસા હૈ આત્મ તત્વ? અખંડ ભી હૈ, એક ભી હૈ, અચલ ભી હૈ ઓર સ્વસંવેદન મે આને યોગ્ય એસા અબાધિત તત્વ હૈ. ઇતના લિયા હૈ તો ઉન સબ બાતો કો એસે એસે બહોત સી બાતે હૈ કે આત્મા એસા હૈ, આત્મા એસા હૈ, આત્મા એસા હૈ. સમયસાર શબ્દ સે લેકર કે બહોત શબ્દ કા પ્રયોગ કિયા હૈ. જીતને ભી શબ્દ કહે હૈ એ આત્મ સ્વરૂપ કી વિશેષતા વાલે શબ્દ હૈ ઓર ઇસી શબ્દ સભી વિશેષતાઓ કા એક વિશેષ જો હૈ વો આત્મ સ્વરૂપ હૈ. એક વિશેષ કી હી સભી વિશેષતા અલગ અલગ ભિન્ન ભિન્ન શબ્દો દ્વારા દિખાઈ જાતી હૈ. બાત તો ઠીક હૈ લેકિન મોમોક્ષુ જીવ કા પ્રયોજન તો યહ હૈ કે હમ આત્મ સ્વરૂપ કો આપને કહા એસા આત્મ સ્વરૂપ કો હમ કૈસે ગ્રહણ કરે, કહાં સે ગ્રહણ કરે? અખંડ સે ગ્રહણ કરે, એક સે ગ્રહણ કરે, અચલ સે ગ્રહણ કરે, અબાધિત સે ગ્રહણ કરે, ક્યાં કરે? ઇસ શ્લોક મેં ઇતને શબ્દ આયે ઓર ભી બહોત શબ્દ લિયે હૈ સારે ગ્રંથ મે. આચાર્ય મહારાજ ને ઇતિ કરતે હુએ ધ્યાન ખીચા હૈ કે દેખીએ હમને આત્મના તત્વ આત્મ તત્વ કો જ્ઞાન માત્રમ એસા હી કહા હૈ. બાર બાર હમને ઇસ શબ્દ કા પ્રયોગ કિયા હૈ, અધિક જગે વો બાત કહી હૈ. ઇસકા કોઈ કારણ ભી હૈ, ઇસકે પીછે કોઈ મર્મ ભી હૈ. મોક્ષુ જીવ કો આત્મ તત્વ ગ્રહણ કરને કે લિયે જ્ઞાન માત્ર જો હૈ વો કામ કી ચીજ હૈ, બાકી પીછે કી ચીજ હૈ. વો જ્ઞાન માત્ર સમજ મે આ જાને સે ફિર વો સબ બાત સમજ મે આ જાયેગી, ઇસકે પહેલે સમજ મે આને વાલી નહીં. યહી અભિપ્રાય છે ઇસ પદ કી રચના કી હુઈ હૈ ઓર પંડિત જયચંદ્ર જી ને ભાવાર્થ મે इस विषय में बहुत अच्छा लॉजिक भी दिया है और भाव भाषण होने के लिए कि ज्ञान मात्र कैसे काम में आता है इसका भी निर्देश यहाँ पर किया है. श्लोकार्थ करते हैं कि इस प्रकार से यह आत्मा का तत्व, आत्मा का तत्व परमार्थ भूत स्वरूप या आत्मा का तत्व है, ज्ञान मात्र निश्चित हुआ अवस्थितम का अर्थ यह क्या है? अवस्थितम मैंने निश्चित किया, चौकस किया, ज्ञान मात्र ये ऐसा ही आत्मा है। ज्ञान मात्र कह करके रागादि और देहादि सभी जो प्रकार है उसका निषेध कर दिया है, जो संयोग में है। राग और देह का संयोग है, संयोग इसलिए है कि दोनों का वियोग होता है, ज्ञान का वियोग नहीं होता है, क्योंकि स्वरूप भूत है। जो अन्य तत्व है, पर तत्व भूत है, उसका वियोग होता है। तो मात्र कह करके उनको निषेध कर दिया। ज्ञान मात्र में और भी बहुत बातें हैं, यह वो है कि द्रव गुण पर्याय उत्पाद वे ध्रुव, ये बात इसमें नहीं लेनी है। मात्र कह करके, मात्र कह करके ये बात नहीं लेनी है, वरना जो तत्व ज्ञान के अभ्यास करते हैं उनको पहला प्रश्न ये उठता है कि ज्ञान मात्र द्रव है, गुण है कि पर्याय है? क्या ज्ञान मात्र में ज्ञान के पर्याय हम समझे या त्रिकाली हम समझे, हम क्या समझे? तो कहते कि तीनों में से एक भेद भी नहीं ले रहा है। ज्ञान मात्र न द्रव का भेद स्वरूप है, न गुण का भेद स्वरूप है, न पर्याय का भेद स्वरूप है। ऐसा निर्भेद जो है वो ज्ञान मात्र है। ये थोड़ा सूक्ष्म विषय मान लिखाई देते हैं यार, कि ज्ञान मात्र माने क्या कहना चाहते हैं आचार्य महाराज। पंचाध्यायी में ये विषय चला है, वो सूक्ष्म ग्रंथ है, सूक्ष्म तत्वता ग्रंथ है। तो हमारे एक विद्वान है अलवर में, जो हमेशा स्वाध्याय करते हैं, अजीत कुमार जी करते हैं, हमारे आगरा के शिविर में आए थे। हमारे विद्वान तो सभी शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, उसमें पंचाध्याय का अध्ययन करते हैं, ये बहुत उलझन में पड़ गए। थोड़ा खोजी आदमी है, वहां बात ऐसी रही है कि जो आत्मा अनित्य है वो तो व्यवहार नहीं का विषय है, लेकिन आत्मा नित्य है वो भी व्यवहार नहीं का विषय है। मां ऐसी बात चली है। पंचाध्यायी उत्तरार्ध गाथा 761-62-63, ये तीन गाथा एक साथ है, इनमें ये विषय चला है। तो उसको ये लगा कि अनित्य है वो तो व्यवहार नहीं का विषय है, लेकिन नित्य आत्मा व्यवहार नहीं का विषय क्यों करता है? और उन्होंने आगे ऐसा कहा हुआ है शास्त्रकार ने, कौन शास्त्रकार है वो आज कोई नहीं जानते, अपना नाम नहीं दिया है शास्त्र ने, कि आत्मा न नित्य है न अनित्य है, आत्मा तो अनुभाई स्वरूप है। कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और हमारे वहां शिविर में एक विषय चल रहा था लक्ष्य लक्षण की चर्चा का, तो बात कोई उनकी उलझन के उत्तर रूप कोई बात ऐसे चल रही थी, हमको तो पता ही नहीं था कि वो कैसे उलझन में, वो उलझन में उतना था कि उसको नींद नहीं आती थी, कहीं समाधान नहीं होता था। अपने सभी विद्वानों के पास वो चर्चा करने को चला गया खोज के लिए, सारे हिंदुस्तान में जो बड़े बड़े हैं, सोनगढ़, सब जगह आ गया, कहीं भी इस चर्चा का उसको समाधान नहीं हो रहा था। 6-12 महीना निकल गया इसमें, मुझे समाधान नहीं होता है, तो मैं तो कैसे शास्त्र पढ़ता हूँ, स्वाध्याय कराता हूँ, सबको सब सुनने को बैठते हैं, हमेशा 40-50 भाई बहने स्वाध्याय में शरीक होते हैं, शरीक मैंने उपस्थित होता है। तो वो खुद बहुत उतना तकलीफ में आ गया मेंटली कि उसका 3-4 किलो वेट कम हो गया चिंतित दशा में। और तो परिवार वाले घबरा गए, एक तो सिंगल बॉडी का आदमी था, उसको 3-4 किलो वेट डाउन हो गया, दिखाई नहीं, मैं वो धुन में रह कर बात क्या है, रुपये स्वरूप में बात क्या है। हमारी कोई बात ऐसी चल रही थी कि देखिए जो लक्षण है वो तो पर्याय में है, उपयोग लक्षण है जी, उपयोग लक्षण से सनातन संप्रदाया है जी, उपयोग तो लक्षण है, और उपयोग और लक्षण वास्तव में महाराज ने तत्वार सूत्र में दिया, वो पर्याय में है। और आत्मा हमको तो ध्रुव पहचान करना है, ध्रुव की पहचान करना है, अनादि से वो स्वरूप को नहीं जाना, ये पर्याय में मेल कैसे खाता है ध्रुव को समझने का। हम ये बात ले रहे थे अपने स्वाध्याय में कि देखिए ये पर्याय में आत्मा पर्यायत्व रूप नहीं है, और त्रिकाली द्रव्य में द्रव्यत्व रूप नहीं है, क्योंकि पर्याय भी एक भेद है और द्रव्य भी एक भेद है, और आत्मा अभेद निर्भेद है, निर्भेद ऐसा अभेद है। अगर जो केवल नित्य होता, हमारा मेंटल प्रोजेक्शन क्या है ध्रुव 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 का, कि ये तो पर्याय रहित है ना, इसलिए वो अकेला कोई ध्रुव का पिंड है, तो ऐसे हम स्वभाव को देखने को जाते हैं तो एक मेंटल मानसिक कल्पना होती है। अगर ऐसा ही होता तो उपयोग लक्षण में पाया नहीं जाता, ये स्वभाव उपयोग लक्षण में नहीं। केवल नित्य होता तो अनित्य पर्याय में वो पाया नहीं जाता, हम वो बात चला रहे थे, और केवल पर्यायात्मक होता तो विनश्वर हो जाता, क्योंकि पर्याय तो विनश्वर है, इसलिए आत्मा केवल नित्य भी नहीं, केवल अनित्य भी नहीं, अनुभव स्वरूप है। तो उनको लगा कि ये तो मेरी उलझन वाली बात है, तो वो ध्यान से सुनने लगे, अध्याय पूरा हुआ तो हमारे कमरे में आए, ग्रंथ लेकर के ऐसे बात थोड़ी करके बोलिए, साल डेढ़ साल से बहुत उलझन में है, घबराए हुए हैं, शारीरिक इफेक्ट हो गई है हमारे मेंटल इफेक्ट से, उतने हम डिप्रेशन में आ गए हैं, तो ये बात हमको समझ में नहीं आ रही है, क्या था पढ़ाई केस में क्या है, बात तो सही है, आपका स्वभाव द्रव्य गुण पर्याय तीनों में है, क्योंकि गुण तो शक्ति रूप है ही, तो अनंत गुण का अनंत शक्तियों का एक अभेद रूप को तो अपन द्रव्य कहते हैं, इसलिए शक्ति को तो निकालने का सवाल नहीं रहता, और अनंत गुण अनंत शक्तियों का एक रूप तो अपन द्रव्य कहते हैं, द्रव्य स्वभाव कहते हैं, तो द्रव्य गुण तो आएगी, आपको जो तकलीफ है वो तो पर्याय की है, तो पर्याय का आश्रय लेना नहीं है, पर्याय का लक्ष्य करना नहीं है, और यहाँ जो चलती है उपयोग और लक्षण में इससे आपको तकलीफ होती है, आपके प्रवचन में जो वो बात है वो हमको तकलीफ वाली है, बाकी तो सब ठीक समझ में आती है, लेकिन नित्य भी नहीं और अनित्य नहीं, अनुभव स्वरूप है, वो बात दिमाग में बैठी नहीं है। मैंने कहा कि स्वभाव व्यक्त होने का स्थान कहाँ है, स्वभाव कहाँ प्रदर्शित होता है, उपयोग ज्ञान गुण के पर्याय है या ज्ञान गुण के पर्याय भी नहीं है, क्या आनंद गुण के पर्याय है, क्या अस्तित्व गुण के पर्याय है, किस गुण के पर्याय, तो क्या ज्ञान गुण के पर्याय, क्यों ज्ञान गुण के पर्याय, कि ज्ञान गुण इसमें प्रकट होता है, ज्ञान गुण की अभिव्यक्ति है इसमें, जैसे हम कहेंगे कि पावर में ठंडी गर्मी नहीं है लेकिन पावर समझा जाता है, कैसे, कि इसमें ठंडक होती है, इसमें गर्मी होती है, इसमें लाइट होती है, इसमें पंखा चलता है, तो पावर है, तो उसकी कोई अभिव्यक्ति पावर को समझाने के लिए है कि नहीं है, गर्म होना वो पावर नहीं है, ठंडा होना वो पावर नहीं है, लेकिन पावर को पकड़ सकते कि मैं याद नहीं, पर्याय सिवा कैसे पकड़ोगे आप अभिव्यक्ति, वायर में करंट चलता है कैसे पकड़ोगे आप, तो कहीं भी वो व्यक्त होगा वहां से पकड़ोगे, स्पर्श करने से जनजनाती होती है, जैसे सामर्थ्य को, स्वभाव को, शक्ति को समझने के लिए पर्याय सिवाय कोई आधार तो है नहीं। अब आप पर्याय को खोज के काल में, निश्चय निर्णय के काल में भी आप पर्याय को पहले से उड़ाना जाओगे, उड़ाओगे तो आपको कहाँ से पता, कहाँ से मिलेगा? जब आपके पास किसी व्यक्ति का पता ही नहीं है तो आप कहाँ ढूंढोगे उसको? एड्रेस तो चाहिए कम से कम। इसके पहले तो बगल में वो रहता होगा तो भी आप उधर उधर जाएंगे, आदमी रहेगा आपने पड़ोस में, रात खोजेंगे सारे सिटी को, वो आदमी कहाँ रहता है, आदमी कहाँ रहता है, क्योंकि आपके पास पता नहीं। ये पता निकालने के लिए उपयोग और लक्षण है, और वहां स्वभाव है जो ज्ञान वेदन है, वो तो अनुभूति स्वरूप है, और वेदन स्वरूप से वेदने में आए तो वही आत्मा है। सुबह जो चर्चा में चला गया, स्वरूप से वेदन में आने वाला ज्ञान, स्वयंपना से वेदन में आने वाला ज्ञान वही आत्मा है। आपको कहीं उधर उधर नहीं जाना है, कल्पना नहीं करने के ध्रुव ऐसा है, ध्रुव ऐसा है, कोई कल्पना करने की जरूरत नहीं है। ध्रुव तक पहुंचने की, त्रिकाली तक पहुंचने की यही चैनल है, दूसरे कोई चैनल नहीं है,
सीधा कनेक्शन है,
एक ही रास्ता है, दूसरा रास्ता भी नहीं है, और सब कल्पना है ऐसा समझना है। दूसरा जो कुछ है वो कल्पना मात्र है और कुछ नहीं, ऐसे ही प्रैक्टिकली काम होता है, दूसरे ढंग से होता ही नहीं। इसलिए वहाँ अनुभव स्वरूप कहा, इसका मतलब न नित्य है न अनित्य है। तो हमारे स्वाध्याय में कभी ये बात निकलती है तो कोई विद्वान भी होते हैं तो फिर तो हम ये कहें कि उभय स्वरूप कह देवे तो आप अनुभव स्वरूप क्यों लेते हैं? नित्य अनित्यात्मक ऐसा ले लेवे तो पंचाध्यायी कार्य, उसने उभयात्मक क्यों नहीं लिया, उभय स्वरूप क्यों लिया? क्योंकि उभय स्वरूप है वो प्रमाण का विषय है, जबकि हमारा परमार्थ बुद्ध तत्व तो प्रमाण का विषय नहीं है, इसका भी निषेध है। बात तो समझदारी के है, उभय स्वरूप नहीं कहते के अनुभय स्वरूप क्यों कहते हैं? ये सारा संसार में भी ये बात कहने का अभिप्राय है, ज्ञान मात्र कह करके न द्रव्य को लेना है, न गुण को लेना है, न पर्याय को लेना है, उसी का नाम ज्ञान मात्र है, ऐसी बात है। और उसका कोई स्पष्ट विषय मिलता है समय साहब में? कहाँ मिलता है। 25 कलश 26 कलश लिखे हैं 144 गाथा के पास में, शुद्ध भी नहीं मैं, अशुद्ध भी नहीं मैं, एक भी नहीं मैं, अनेक भी नहीं, करता भी नहीं मैं, भोगता भी नहीं, आया कि नहीं समय, नित्य भी नहीं अनित्य भी नहीं। ये बात क्यों कहनी, ये बात कहने की क्यों जरूरत पड़ी? कि जहां तक वो एक हूँ, अभेद हूँ, ध्रुव हूँ, द्रव हूँ, वहां तक उसका भेद उत्पन्न हो जाएगा। मानसिक प्रक्रिया होती है ना भेद वाली, और वहां वहां तक अनुभव नहीं होता। इसलिए द्रव्य गुण पर्याय के भेद को ज्ञान में जब निरस्त किया जाता है तब ही ज्ञान मात्र का अनुभव होता है, और यही आत्मा है, अपने रूप अनुभव होता है, यही आत्मा है। ये इस विषय की सूक्ष्मता है, क्योंकि जो स्वभाव है वो द्रव्य में है, गुण में भी है, पर्याय में भी है, पर्याय में भी, तीनों में व्याप व्यापक रूप है, पर तीनों में तीन टुकड़ा नहीं है, द्रव्य का टुकड़ा अलग, गुण का टुकड़ा अलग, पर्याय का टुकड़ा अलग, ऐसा नहीं है। जैसे हार में डोरी का टुकड़ा नहीं है कि ये पहले पारा का टुकड़ा, ये दूसरा का टुकड़ा, ये पहला मोती का टुकड़ा, दूसरा दूसरा मोती का टुकड़ा ऐसा नहीं है, सलंग है जैसा दूरा
अखंड कर दिए
ऐसा, ये आत्मा जो है वो द्रव गुण पर्याय में सलंग है। हिंदी में सलंग कहते क्या कहते हैं,
दूरी माला,
माला में जो दूरी होती है, मोती तो एक एक होते हैं और जो दूरी है वो सलंग, सलंग में
माला बोलते हैं,
माला माला तो मोती और दूरी दोनों मिलके माला। अब मोती तो एक एक है
कंटिन्यू,
और दूरी कोई एक एक मोती की अलग अलग है क्या, कि नहीं है, सलंग
है,
सलंग ही बोलते हैं ऐसा, सलंग है ये क्या, आत्मा द्रव्यगुण पर्याय में सलंग है, इसलिए उसको द्रव्य का टुकड़ा करे, गुण का टुकड़ा करे, पर्याय का टुकड़ा करे तो ये अनुभव में
नहीं हो सकते।
तो हम कहेंगे कभी शास्त्र में तो द्रव्यगुण पर्याय के बाद बहुत चली है, ये भी एक तर्क है, कहा कुछ स्तर उसका भी है, जहां तक वस्तु का स्वरूप बंधारणीय दृष्टि से समझना है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजिशन क्या है, तो द्रव्यगुण पर्याय से वस्तु व्यवस्था समझनी पड़ती है, उसको अध्यात्म के दृष्टिकोण में अन्वेषण काल कहते हैं, खोज का काल कहते हैं। वो गाथा दिया नए चक्र की 268 गाथा, तत्ण अन्वेषण काले युक्ति मुगेण युक्ति मार्ग में द्रव्यगुण पर्याय से अन्वेषण काल में समझ में आता है, वो आराहण समय आराधना के काल में नहीं, खोज के काल में वो बात है, आराधना के नो आराधन समय पक्ष को अनुभव करना, आत्मा प्रत्यक्ष होता है, आता प्रत्यक्ष में भेद भेद करने की जरूरत
नहीं है,
परोक्ष में ये द्रव गुण पर्याय वाला भी होता है, और ये अन्वेषण काल का विषय है, ये अनुभव काल का विषय है, दोनों का स्तर ही अलग अलग है, वो बात स्पष्ट ने चक्र में किया है, माइल धवल आचार्य उन्होंने ये ग्रंथ बहुत बड़ा लिखा है, करीब 500 गाथा है, तो यहाँ अमृत चंद्र आचार्य महाराज टोटल लगाते हैं सारा समय सार का टोटल, इस प्रकार से आत्मा का तत्व ज्ञान मात्र निश्चित हुआ, इतनी लंबी चौड़ी बात करके निश्चय क्या हुआ, कि आत्मा ज्ञान मात्र है, मैं ज्ञान मात्र हूँ, आत्मा मैंने, मैं अहम इति, आत्मा मैंने कौन, अहम इति
इतना
मैं ज्ञान मात्र हूँ, बस
इतनी बात समझाइए पूरे समय पर,
ये सारा समय सार ज्ञान मात्र में पूरा हो जाता है। बिल्कुल गए थे तो निवृत्ति के दिनों में, तो बेंगलोर होके जाना पड़ता है, तो बेंगलोर में बहुत मंदिर मिल गए, उनको कोई सूचना मिल गई तो वो स्टेशन पर आ गया, तो बेंगलोर में रोक लिया, साथ सुबह मंदिर में चला, 15-20 मिनट लेट आए साध्याय में, कोई वैसे ऐसा ही ज्ञान मात्र वाली कोई बात चल रही थी, क्या मैं आपको 6 लाख को तो लकड़ा बहुत है, स्वाध्याय में भी टाइम सरसरी हो सकते नहीं है, अभी 415 गाथा वाला समय सर आपके दिमाग में रहने की जगह ही नहीं है, इतनी बातें भरी है कि ये 415 गाथा वाला समय सर आप दिमाग में कैसे रखोगे, बहुत लंबी चौड़ी बातें किया है, फिर भी एक सुविधा है, एक शब्द की जगह है दिमाग में। आचार्य महाराज ने वो बात भी कर दी है कि सारा समय सार एक ज्ञान मात्र में पूरा होता है, इसको जैसा है वैसा भीतर में देखो, देखने का कोशिश करो, प्रत्यक्ष है क्या, प्रत्यक्ष है उसको तुम प्रत्यक्ष करो, आत्मा तो ज्ञान मात्र है, तो ये 415 का टोटल आ जाएगा, वरना तो तुम्हारा तो कोई जगह ही नहीं है दिमाग में। मुझे तो ऐसा लगता है कि आपके दिमाग में कोई इतना वॉल्यूम बड़ा रखने की तो कोई जगह नहीं दिखती मुझे तो। लेकिन एक सुविधा है ज्ञान मात्र को समझो, समझ करके भीतर में देखो, समझने के लिए ये लॉजिक वगैरह है तो लॉजिक ही देंगे इसके, और फिर भीतर में देखो निविड़ा हो जाएगा, आराधना हो जाएगी। क्या
जी?
आराधना हो जाएगी
बराबर।
आराधना में लंबा चौड़े विचार नहीं है, वो विचार काल में लंबा चौड़ा विचार चलता है तो थक जाता है। आराधना के काल में लंबी चौड़ी विचार की परिस्थिति नहीं है, वहाँ तो अपने ज्ञान वेदन से, अपने मैंने स्व संवेदन से ज्ञान मात्र में सावधान होना है। बस वेदन से ज्ञान मात्र में सावधान हो जा, बस ये आराधना है और कुछ आराधना
नहीं।
इतनी संक्षेप वाली बात है, कहने में भी इतनी संक्षेप वाली बात है, परिणाम में तो उतना ही भेद नहीं है, कहने में उतना भेद पड़ता है, परिणाम में तो उतना ही भेद नहीं है।
वेदन में ज्ञान मात्र आना चाहिए,
ज्ञान मात्र स्वसंवेदन स्वरूप है, ज्ञान मात्र से स्वसंवेदनात सिद्धि, सिद्धि मैंने प्राप्ति, ज्ञान मात्र है लेकिन कहाँ प्राप्त होता है, कि स्वसंवेदन में प्राप्त होता है वो, और जगह तो प्राप्त होता नहीं, वो रहता भी नहीं, रहता भी स्वसंवेदन में। इसलिए इधर लिखा है परिशिष्ट में कि ज्ञान मात्र से स्वसंवेदन सिद्धत्वात्, स्वसंवेदन में वो पाया जाता है, ज्ञान मात्र यहाँ पाया जाता है।
इतना शॉर्टेस्ट कष्ट है,
एकदम बाईपास सर्जरी सब निकाल दो आगे पीछे वाली यहाँ कांटी करके, सीधी सादी लाइन है, प्रत्यक्ष कर लो, वेदन परोक्ष हो ही नहीं सकता, प्रत्यक्ष है उसको प्रत्यक्ष करना है, प्रत्यक्ष नहीं है ना प्रत्यक्ष करना है वो नहीं है, परोक्षता का पर्दा हटाना है, वस्तु तो पर्दा के पीछे प्रत्यक्ष ही है, उतनी बात है। बिल्कुल बात ऐसी है, वो कैसा टोटल लगाया है,
एकदम समरी कर दिया है।
हाँ, एक चरण में बात रख दी है,
ये हमको कहना है समय
सार, सारे समय सार में इति इति करके हमको तो ज्ञान मात्र ही निश्चित करना है, दूसरा हमको कुछ करना ही नहीं। सारा समय सार में हमारा जो अभिप्राय है ये ज्ञान मात्र को निश्चित कराने का ही अभिप्राय है, निश्चित करना को, निश्चय करना को, भाववासन कराना को, वेदन कराना को, एक ही बात है। ज्ञान मात्र निश्चित हुआ कि जो ज्ञान मात्र तत्व अखंड है, एक है, अचल है और स्वसंवेद्य है और अबाधित है, कितने विशेष, और ये तो वो कैसा है चारों ओर से देखो तो, कि उसमें खंड नहीं है, अनेक नियाकार होने पर भी और खंड खंड ज्ञान में प्रकार पड़ते हुए भी ज्ञान में खंड होता नहीं है। देखिए वर्तमान पर्याय में कैसे अखंडता मालूम पड़ती है
जी,
ज्ञान में अनेक न्याय
आए,
क्या ज्ञान खंडित हो गया?
नहीं,
ज्ञान में अनेक न्याय आने से ज्ञान में टुकड़ा हुआ क्या?
नहीं,
ज्ञान ज्ञान रहा है। पानी में इतने तरंग हुए कितना पानी हो गया खंड खंड?
नहीं,
सभी तरंग होते हुए भी पानी अखंड है,
बराबर,
छोटे मोटे अनेक तरंग होते हुए भी पानी तो पानी रूप से अखंड ही है, ऐसे अनेक भेद रूप ज्ञान होने पर भी ज्ञान की अभेदता को भेद सकते नहीं, क्या न्याकारों के भेद, ज्ञान के मति शुद्ध अवधि मन प्रेम केवल आदि के भेद, अल्पज्ञ सर्वज्ञ के भेद, कोई भी भेद ज्ञान मात्र को भेद सकता
नहीं,
इसी का नाम ज्ञान मात्र है। सब हर जगह ज्ञान मात्र ही रहता है,
वो कॉमन,
हाँ कॉमन फैक्टर एकदम ले लेना, ज्ञान का कॉमन फैक्टर ये ज्ञान मात्र, वो अपना रूप है, अपनत्व होते ही आत्मा आगे आत्मा है और ये अनुभूति स्वरूप है, वेदन स्वरूप है। एक है अचल है ज्ञान रूप से चलायमान, मेन होता अन्य रूप होता नहीं और अपने से ही वेदन में आता है, संवेद्यमान मैंने अपने से ही वेदन में आता है, उसको वेदन में लेने के लिए साधनांतर की अपेक्षा नहीं है, तो कोई साधन मिल जाए तो स्वसंवेदन हो जाए।
ये तो बात एकदम
एकांत तो मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, और ये अनुभूति स्वरूप है, वेदन स्वरूप है। एक है अचल है ज्ञान रूप से चलायमान, मैं होता अन्य रूप होता नहीं और अपने से ही वेदन में आता है, स्वसंवेद्यमान मैंने अपने से ही वेदन में आता है, उसको वेदन में लेने के लिए साधनांतर की अपेक्षा नहीं है, तो कोई साधन मिल जाए तो स्वसंवेदन हो जाए।
ये तो बात एकदम
एकांत तो मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए उस संवेदन के लिए,
नहीं कोई शर्त नहीं,
उनको एकांत नहीं मिलता है और संग नहीं मिलता सत्संग में से भी हटकर के वेदन में आना पड़ता है
जी।
क्या सत्संग तो बाहर का संयोग है, वेदन में जाते हैं तो सत्संग तो बाहर पड़ा रहता है, तो समोसरण और समोसरण में बैठे हुए श्री जी कहते हैं ना आप लोग, दिगंबर में उपस्थिति है, भगवान को श्री जी कहते हैं, समोसरण में श्री जी विराजमान है ऐसे कहते हैं, पद्धति है ऐसे बोलने की, श्री मैंने लक्ष्मी अनुज गुणों की लक्ष्मी लक्ष्मी वाले हैं, तो सब पड़े रहते हैं और हाथ भीतर में चला जाता है, अनुभव में चला जाता है तो बाहर में सब रह जाते हैं, कोई साधन की अपेक्षा स्वसंवेदन को
नहीं है।
सत्संग तो इसके पहले की बात है, तो इसके प्राथमिक स्तर की बात है, अनुभव के कारण तो सत्संग ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, स्वसत का संग है, इसलिए क्या है पर वही वास्तव में सत्संग, ऐसी चर्चा जहाँ हो वो व्यवहार सत्संग, मूल में निश्चित सत्संग तो अपना सत का संग वही सत्संग है, तो सत्संग कर लिया कि नहीं कर लिया, अनुभव हुआ तो सत्संग कर लिया, अनुभव नहीं हुआ तो नहीं किया, और अबाधित है किसी भी तर्क वितर्क कुतर्क से उसमें कोई बाधा पहुंचा सकते
नहीं है,
यहाँ आत्मा का निज स्वरूप ज्ञान ही है ऐसा कहा है, इसका कारण इस प्रकार से है, स्पष्टीकरण देते हैं आचार्य महाराज ने, इस समय सार में आत्मा का निज स्वरूप ज्ञान मात्र ऐसा क्यों कहा, ज्ञान ही मैंने ज्ञान मात्र ऐसा क्यों कहा, इसका कारण हम देते हैं, उसको समझाना चाहते हैं। एक तो आत्मा में अनंत धर्म है, अनंत गुण धर्म है, उसका तो हम निषेध करते
नहीं,
ज्ञान मात्र कह करके अवैध रूप से सभी भेद को हम समावेश
करते
हैं, लेकिन उस धर्म से बात क्यों नहीं करते हैं, अनंत धर्म में से एक ज्ञान को पकड़ करके दूसरा छोड़ करके हम क्यों बात करते हैं, दूसरे धर्म से क्यों बात नहीं करते हैं, तो इसमें कारण वो है कि कितने तो साधारण मैंने कॉमन है अस्तित्व, जो श्रद्धा का विषयभूत है वो धर्म अस्तित्व है।
हाँ जी,
श्रद्धा अस्तित्व को ही ग्रहण करती है, लेकिन पहचानने में वो काम में आता
नहीं है।
क्यों? तो अस्तित्व आत्मा में भी है और दूसरे पांचों द्रव्य में है, तो भिन्न आत्मा की पहचान नहीं होगी। जैसे इतने बैठे हैं, मतलब फलाना भाई कौन, तो उसका एक स्पेसिफिक अलग लक्षण देखना पड़ेगा। जो इसने टोपी पहना है वो हो गया ऐसा कर, क्योंकि दूसरों ने नहीं पहने, इसलिए दूसरों ने भी पहनी हो तो वो लक्षण काम में नहीं आता, क्योंकि कॉमन हो गया, साधारण। ऐसे पांचों में ज्ञान है वो असाधारण है, दूसरे सब साधारण
है,
इसलिए वे अति व्याप्ति वाले हैं। ऐसे गुणों से आत्मा की पहचान हो सकती नहीं, निश्चय हो सकता नहीं, पहचान हो सकती नहीं, लक्ष्य हो सकता
नहीं,
प्रतिभास नहीं आ सकता। और कितने धर्म तो पर्याय आश्रित है, किसी अवस्था में है किसी अवस्था में नहीं होता। जैसे राग है तो पांचों में राग नहीं है, लेकिन आत्मा के सभी पर्याय में राग नहीं है, सिद्धालय में राग नहीं है सिद्ध भगवान को, तो क्या वह आत्मा नहीं है? लक्षण तो निर्बाध लक्षण होना चाहिए, जहाँ बाधा आती हो वो लक्षण लक्षण कहा जाता। इसलिए तो अति अव्याप्ति दोष है उसमें, व्याप्त नहीं है, लक्षण की व्याप्ति नहीं है, ऐसा अव्याप्ति पड़ा है उसमें है। इससे भी आत्मा पहचाना जाता नहीं है। गुरुदेव प्रवचन करते हुए और बात लेते थे कि आनंद है वो आत्मा में है, सुख है आत्मा में, दूसरे पांच में नहीं है। वो विशिष्ट लक्षण होने पर भी उसकी पर्याय विपरीत है, इसलिए यहाँ से पहचाना जाता नहीं। वो खुलासा करते हैं, जी ने नहीं किया है, गुरुदेव करते थे। सुख का पर्याय दुख रूप है, अभी तो दुख से सुख कैसे समझाया जाएगा? इसलिए अशांति है, शांति कैसे समझाएगी? क्या आत्म शांति क्या होती है? अब कहते हैं कि चैतन्यपणा जो शक्ति रूप है, चैतन्य स्वभाव, यद्यपि आत्मा का लक्षण है तो भी शक्ति मात्र है, अदृष्ट प्रकट नहीं होने से अदृष्ट है, दिखता नहीं है, अनुमान करना पड़ता है, अनुमान से काम नहीं होगा, अनुमान का विषय नहीं हो सकता, अदृष्ट है, इसलिए त्रिकाली स्वभाव भी लक्षण नहीं है, ऐसा कहते हैं। त्रिकाली चैतन्य स्वभाव भी आत्मा का लक्षण होने पर भी पहचान के काम में नहीं आता है, लक्षण इसलिए लिया कि वो विशिष्ट है, फिर भी जो शक्ति मात्र है इसलिए पहचान के लिए उसका कोई काम ना, उसका उपयोग होता तो निकम्मा है, पहचान के स्तर में वो निकम्मा है, पहचान यहाँ से नहीं हो सकती। जो चैतन्यपणा है वो पारिणामिक भाव है, पारिणामिक भाव है वो लक्षण नहीं है, पहचानने के लिए नियम साल में तो आएगा। आत्मा पारिणामिक भाव, लक्षण स्वरूप लक्षण है, तो वहाँ भावना का विषय चलाए, वहाँ पहचान का विषय
चलाए,
इसलिए वहाँ लक्षण शब्द का अर्थघटन स्वरूप स्वरूप लेना है। परम पारिणामिक भाव स्वरूप आत्मा है, परम पारिणामिक भाव लक्षण आत्मा है, मतलब स्वरूप आत्मा है, लक्षण का स्वरूप मां होता है, चिन्ह नहीं होता है, यहाँ लक्षण का अर्थ चिन्ह है, ऐसी बात है। शब्द तो एक है, कौन सा प्रकरण चलता है वो समझ में नहीं आएगा,
तो नहीं
हमारे कभी ऐसा चलता है, विद्वानों में तो बहुत तर्क चलता है। देखो भी ये उपयोग लक्षण कहा ना उमा स्वामी ने, तो पर्याय में है, ये व्यवहार लक्षण है, हमको व्यवहार का कोई काम नहीं है, उसको ग्रहण कर दो। और नियम सार में आत्मा परम पारिणामिक भाव लक्षण का, हाँ वो सही सच्चा लक्षण है, क्यों वो निश्चय लक्षण है।
गड़बड़ हो गई,
जब तक प्रैक्टिकल साइड में कोई मुमुक्षु नहीं जाता है तो फिर वो कल्पना करके, शास्त्र के शब्दों में कल्पना कर कर करके फिर उसका अर्थ घटन बिठाने लगते हैं, ये बात हो जाती है कि कल्पना का विषय
नहीं है,
ऐसी बात
है।
वहाँ प्रकरण खुद खुद भगवान की आत्मभावना का चल रही है, उनको भगवान ने को पहचानने का बाकी नहीं है, ये तो मुमुक्षु की भूमिका में पहचानने का स्तर है। पहचान लिया, अनुभव हो गया, फिर छठे सातवें तक पहुँचे हैं तो वो अपने स्वरूप की भावना पा रहे हैं। शास्त्र तो लिखा है इसलिए
अपनी भावना के लिए,
मेरी भावना के लिए शास्त्र लिखा है। आप लोगों को ऐसी भावना हो तो साथ में चल जाओ, स्वरूप भावना में आ जाओ, पर ना मैं तो मेरी भावना के लिए लिख रहा हूँ।
स्पष्टता की
है, स्पष्टता की है, नहीं की है तो समझ में आ सकता है, ऐसा वो ग्रंथ है। तो स्पष्टता तो हमने तो बाद में देखी है, पहले समझ में आया कि ये तो भावना का विषय चलता है, पिछली गाथा देखे जा रहे तो खुद ने स्पष्टीकरण दे दिया है।
मूल गाथा में भी,
हाँ मूल गाथा,
मूल गाथा में
गाथा तो भी है, मेरी भावना की आवश्यकता
है, भावना चैतन्य के तो दर्शन में,
हाँ दर्शन का
दर्शन में दर्शन करेगा,
हाँ यहाँ वही कहेंगे, अभी यही कहेंगे। चैतन्यता लक्षण है तो भी शक्ति मात्र है, अदृष्ट है, उसकी व्यक्ति दर्शन और ज्ञान है, उसमें भी दर्शन और ज्ञान में भी ज्ञान साकार है, प्रकट अनुभव गोचर है, दर्शन निराकार है, प्रकट अनुभव गोचर
नहीं है,
नहीं पता ये बात है इसमें। इसलिए ज्ञान लक्षण लिया है, दर्शन लक्षण नहीं लिया, कोई चर्चा चली सुबह इसमें से तो वो बात चली है,
चर्चा
बात चली, जब तो ये ध्यान में लिया, दर्शन को क्यों लक्षण नहीं कहते, ज्ञान को क्यों लक्षण कहते, ये सवाल चला है, प्रश्न चला है, क्योंकि वो ग्राह्य नहीं है, निराकार होने से उसका ग्रहण नहीं होता है। अवग्रह यह अवाय धारणा है, मति ज्ञान का चार स्टेज पड़ता है, मति ज्ञान पहले उत्पन्न होता है, फिर शुद्ध ज्ञान होता है, तो मति ज्ञान में चार स्टेज है, इसमें अवग्रह यह दो में तो अजीब को ज्ञान भी पकड़ने में नहीं आता, अवाय के स्टेज में पकड़ने में आता है, तीसरे स्टेज में तो दर्शन उपयोग तो इसके पहले पूरा हो गया, तो क्रम से होता है, पहले दर्शन उपयोग फिर ज्ञान उपयोग, तो जब अवग्रह यहाँ नहीं पकड़ में आता है तो दर्शन उपयोग तो आएगा ही कहाँ से, तो कोई अपना दर्शन उपयोग को पकड़ सकता
नहीं।
ये जो ऐसे चक्षु दर्शन देते वो ज्ञानोपयोग है, इसके पहले दर्शन उपयोग हो जाता है, फिर ज्ञानोपयोग को हमको समझ में आता है कि मैंने उसको देखा। ये बात बहुत सुंदर भी है,
उपयोग और लक्षण करते हुए भी पीछे मकई राखी दर्शन में,
हाँ उपयोग में ज्ञानोपयोग लेना है, दर्शनोपयोग लेना ही नहीं है, उपयोग और लक्षण ना ज्ञानोपयोग ही लेना है, दर्शनोपयोग लेना ही नहीं है, और ज्ञानोपयोग में ज्ञान सामान्य लक्षण कुछ है, ज्ञान विशेष नहीं लेना है, अंतरंग लक्षण लेना है, ज्ञान का अंतरंग पकड़ना है, ज्ञान सामान्य अंतरंग है, ज्ञान विशेष बहिरंग है,
विकास है,
नहीं 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 उपयोग का बात चलता है,
उपयोग सीधे सामान्य आयो सकते,
उपयोग जो है उसमें दो अंग है इसका, एक उपयोग को दो अंग है, जैसे हमारे पंचांग है तो पंचांग नमस्कार करते हैं, आठ अंग है तो अष्टांग नमस्कार करते हैं, ऐसे उपयोग को दो अंग है, उपयोग अंगी, उपयोग के दो अंग अंतरंग और बहिरंग, अनेक ज्ञेयों का आकार वाला जो गया का रूप योग है तो बहिरंग है, और ग्य 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 ऐसा सामान्य जो है वो उसका अंतरंग है और विघ्न वहाँ है, सामान्य में विघ्न है। विचार ज्ञान में कहा विघ्न आता है, ज्ञान अधिक ज्ञान में आता है उसमें विघ्न क्या आता है, अधिक ज्ञान में आता है। और आत्मा एक रूप है और निराकार ज्ञान तो अनेक रूप है, मेल का खाता है लक्षण
लगीना बहिरंग नहीं अंतरंग
अंतरंग वही इसका लक्षण है, बढ़ना तो फिर वो विशेष वाला बढ़ेगा वहाँ क्या। जब मेरा ज्ञान सामान्य ही स्वरूप में हूँ, ऐसा सदृश स्वरूप में हूँ, क्योंकि वो एक रूप है, अनेक रूप है नहीं। नियाकार ज्ञान अनेक रूप है, ज्ञानाकार ज्ञान तो एक रूप है, पर आत्मा भी एक रूप है इसलिए सदृश है। आत्मा के मुख्य मुख्य सभी लक्षण इसमें पाए जाता है, एक रूपता, प्रत्यक्षता, निर्विकल्पता। विशेष में विकल्प है, सामान्य में कहा विकल्प है, और ये अंतत्वपणा। जब वो विशेष ज्ञान ऐसा अंदर बोलता है तब पता चलता है कि सामान्य ऐसा है, वेदन ऐसा है। वेदन को ग्रहण करने वाला तो ज्ञान विशेष होता है, वेदन सामान्य में है। तो मैं त्रिकाल अंतर्मुख स्वभावी हूँ ये भी तभी पता चलता है, वेदन वेदक स्वभावी हूँ वो भी तभी पता चलता है, प्रत्यक्षपणा का भी वहां से पता चलता है, निर्विकल्पता का भी वहां से पता चलता है। वरना त्रिकाल निर्विकल्प है वो कैसा समझा जाए, अनुमान करके समझना पड़ेगा। ये प्रगट है निर्विकल्प, जो ज्ञान सामान्य है वो तो निर्विकल्प है,
वही
ज्ञान से दिशांतर करने का चर्चा प्रकट करने लायक नहीं थी, इसलिए गुरु जी ने प्रकट नहीं की। उनको थोड़ा ये विषय में जो प्रश्न आपने किया वो मैंने गुरुदेव को बोला था, उसके चैम्बर में जाते कभी तभी चर्चा निकाली थी कि ये जो भाववासन के काल में जो स्वसन्मुख हुआ ज्ञान, जो ज्ञान विशिष्ट उधर जाता था तो उधर आया, अपने को पहचाना, तो दिशांतर तो हुआ लेकिन जात्यंतर हुआ कि बदला है तो है
शास्त्रीय पद्धति नहीं सकती है,
स्पष्ट कर देगी अपने आप बिना पूछे। क्यों? कि हमारे लोग शास्त्र स्वाध्याय करते हैं और हमको आत्मा का निश्चय है, आत्मा ऐसा ही है, गुरु कहता है, शास्त्र कहता है, ऐसा ही हमको लगता है, तो फिर हमारा ज्ञान जाति अंतर हो गया। ऐसा मुक्सूर नहीं लेगा, उसको नुकसान हो जाएगा, इसलिए हम नहीं कहते हैं, चर्चा को निकालते ही नहीं। प्रसिद्ध में वो चर्चा कभी हमने एक प्रश्न किया था मुंबई में, इसका उत्तर नहीं देंगे इसमें। वहां तो वो चिट्ठी भेजते थे, पर्ची भेजते थे, नाम तो कोई देते नहीं थे, मुंबई में नहीं देते, तो उल्टा करके वही प्रश्न पूछा तरकीब से। एडवोकेट लोग करते हैं ना, इधर से पूछे, उधर से पूछे, उधर से पूछे, सामने भी थोड़ा तरकीब कर लिया, किसी पत्ती भेजा। मुंबई बोले, बोला कि नहीं ये तो रोका हुआ प्रश्न है, इसका उत्तर नहीं देंगे। पता नहीं था कौन पूछ रहे थे, वो तुम्हारे तो पर्ची में तो पता बोलते किसके पर्चे आते हैं, सैकड़ों आदमी बैठे हुए थे रौनक में, रौनक में भरली सी फेस पर, रौनक उनके मकान में थे ना, रमणी भाई के रौनक इंडस्ट्रीज वाले वहाँ ठहरे हुए थे गुरुदेव, उसके प्रांगण में रात्रि तरह चल रही थी रात को। हमने पूछा प्राइवेट में तो बात हो गई थी, तुम बातें कहें, ऐसी बात नहीं करते हैं। मैंने काय का खोले किसी का नसीब हो तो कोई निकल जाए तो निकल जाए, नहीं निकलेगे गुरुजी सतर्क बहुत थे, उत्तर नहीं दिया, कुछ नहीं कुछ नहीं, इसको जाने दो, इस प्रश्न को जाने दो, प्रश्न छोड़ दिया तो थोड़े दूसरे ढंग से उसको रखा, ढंग से रखा तो गुरुजी को तो पता चलता ही है क्या पूछना चाहता है, खुला नहीं वो तो वो का वो प्रश्न है, जाने दो उसको ऐसा करके
न्यायाधीश है ना, न्यायाधीश है ना, एडवोकेट को बरबर समझ जाता
है तो समझ नहीं तो बचा कैसे,
बराबर न्यायाधीश है,
एडवोकेट तो खड़ा रहना पड़ता है, वो बैठे बैठे बैठा है, सलाम करना पड़ता है, आते हैं तो खड़ा हो जाता है, एडवोकेट बैठा है, न्यायाधीश आता है तो उसको खड़ा होना पड़ता है, खड़ा होना पड़ता है कि नहीं होता,
बोलू पड़े सलाम करने बोलव पड़े पची नहीं पशु,
अच्छा शू बोले विनय करना पड़ता है, जिससे न्याय लेना है उससे उद्देश्य लेना है,
ये वक्त पूछा लीजिए हमें कि ये व्यक्ति नहीं तो परंतु आगे क्रिस्तो से एनी मेरे भगवान उससे
डिस्क्रिशनरी पावर न्यायाधीश को डिस्क्रिशनरी पावर है, डिस्क्रिशन अपना लेते हैं, निर्णय अपना करना है, बात दोनों की सुनेगा, दोनों का सबूत भी आएगा, विटनेस भी आएगा, अपने अपने बात का सबूत, अपने अपने बात के विटनेस और अपने प्रेजेंटेशन, फिर किसकी मानना और किसके नहीं मानना, दोनों में से एक के मानेगा दूसरे के नहीं मानेगा, उसको पावर दिया गया है,
लेकिन
हमारे जो अध्यात्म के शास्त्र है ये सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश भी पढ़ा रहे ऐसा न्याय निकालता है, इसके हाथ में अध्यात्म है ना, उसको वो न्याय विशारद होता है, कितना सुप्रीम कोर्ट वाला उसको शिष्य हो जाए ऐसा ऐसा नहीं निकाल सकते हम लोग, इतना ताकत है अध्यात्म में, क्योंकि पूर्ण निर्दोषता है, न्याय मैंने क्या निर्दोष की प्रसिद्धि करना, निर्दोषता की प्रसिद्धि करना, ये तो पूर्ण निर्दोषता की प्रसिद्धि का लाइन है, उसमें जो न्याय की दृष्टिकोण है वो तो न्याय की दृष्टि बहुत सूक्ष्म बहुत पहनी हो जाती है, ऐसा बोलिए
ज्ञान माँ मैं पता पड़ गया सामान्य ज्ञान बात उपयोग लक्षण अभी आप एक दिन पहले एक जाने के क्या करो ज्ञान खाइए लोग सामान्य ज्ञान मैंने टुकड़ा पड़ गया कई जगह टुकड़ा पड़ा
टुकड़ा दो नहीं है एक पर्याय के दो कुंभ है, आप दर्पण देखिए परीक्षा कांच हम हमारे मुंह के सामने रखते थे तो हमारे मुंह की आकृति आई, उसके पहले वो नीचे पड़ा था उल्टा तो कौन सी आकृति थी उसमें
कोई भी जमीन
उधर रख दिया जमीन तो क्या है दूर हो तो आकृति आवे तो रख दिया तो इसकी आकृति क्या आएगा कौन देखेगा इसकी आकृति बीच में कोई देखने वाला तो है नहीं, और आकृति भी आती है निराकृत अवस्था हो तो आकृति उठ सकती है, लिखे कागज पर लिखा नहीं जाता है कोरे कागज पर लिखा जाता है, लिखे कागज पर लिखा जाता है क्या लिखा तो कोरे कागज पर लिखा जाता है, ऐसे वो निराकृत अवस्था में आकृति उठती है, मूल निराकृत है और अनेक आकृतियां उठ सकती है वही जगह है वही जगह पे क्योंकि मूल निराकृत है, इसलिए अगर आकृति पर तो आकृति उठ भी नहीं सकती, दूसरी आकृति आ सकती है वही दर्पण में, इसका कारण क्या को? खुद निराकृत है इसलिए मूल में, तो इसकी मूल दशा तो वो है कौन सी जो निराकृत अवस्था है वही इसकी मूल दशा है, आकृति वाली मूल दशा नहीं है वो तो उत्तर दशा है उसका, ऐसे ज्ञान में अनेक ज्ञाकार वाला ज्ञान है, ये ज्ञान की मूल स्थिति नहीं है, मूल दशा नहीं है, ऐसा ज्ञान का स्वरूप नहीं है, ऐसी बात है, और जो निराकार
प्रकाश शक्ति में मिक्स होकर स्वच्छता शक्ति प्रकाश शक्ति मिक्स करने है वो जो ज्ञान शुद्ध ज्ञान से
आपने एक बार सुधरवा विचार करो, एक ज्ञान माँ એક જ્ઞાન માં સામાન્ય જ્ઞાન છે એ સ્વભાવ સદૃશ છે, જેવો ત્રિકાળે સ્વભાવ છે એવું જ એ સામાન્ય જ્ઞાન છે. એટલે ગુણ પર્યાય ના ભેદ ને નિરસ્ત કરવામાં આવે તો એ જ આત્મા છે, કેમ કે ત્યાં વેદન છે. એટલે સત્તર ગાથામાં કીધું છે કે અનુભૂતિ સ્વરૂપ છે, ખરેખર તો ત્યાં જ્ઞાન વેદન છે, અનુભૂતિ સ્વરૂપ છે, એ જ ભગવાન આત્મા છે, એ જ બધાને વેદન માં આવેલું છે. જ્ઞાન સામાન્ય અને જ્ઞાન વિશેષ નું પ્રકરણ ચાલ્યું છે પંદરમી ગાથા. સામાન્ય નો આવિર્ભાવ કરવો, વિશેષ જ્ઞાન નો પૂછા ગુરુદેવ કો સાહેબ, એ ગામાં જ્ઞાન સામાન્ય તો ત્રિકાલી કી બાત હે ને, કે પર્યાય કી બાત હે, તો કે યહાં પર્યાય કી બાત હે, તો વહાં લિખા હે પરંતુ રસ્તા કરવા દી વાત સ્પષ્ટ આઈ કે પર્યાય કી બાત હે, ત્રિકાલી કી બાત હે. लेकिन वहां द्रव्य पर्याय का भेद निरस्त हो जाता है अनुभव में और आश्रय हो जाता है, ठीक होकर के सामान्य पर आश्रय हो जाता है, त्रिकाली पर विधान हो जाता है. ऐसे वेदन से लक्ष्य होता है, पर लक्ष्य पूर्वक वेदन का आविर्भाव होने से अनुभूति होती है, दोनों एक दूसरे का पूरक हो जाता है,
भेद निरस्त हो जाता
है. हाँ, निरस्त है. इसलिए द्रव्यगुण पर्याय का भेद ज्ञान मात्र में नहीं है, उसी को ज्ञान मात्र कहते हैं. ऐसे बात है, ये बात बहुत सुंदर लिखा है. ज्ञान में भी ज्ञान साकार है, मैंने कुछ उसका स्वरूप निश्चित कर सकते हैं वेदन से. और अनुभव को चले तो अनुभव में जो चीज आती है उसका स्वरूप हम निश्चित कर सकते हैं कि ये आम का ऐसा स्वाद है, शक्कर का ऐसा स्वाद है, द्राक्ष का ऐसा स्वाद है, तीनों चीज मीठी है लेकिन तीनों का स्वाद भेद है. क्यों? अनुभव में आता है तो उसका स्वाद को निश्चित करना, क्योंकि वो साकार है ऐसा है, तो उसका निश्चय होता है कि ऐसा है, ऐसा है, इसका नाम साकार बना है. ऐसे ज्ञान साकार है क्योंकि अनुभव से निश्चित होता है, और दूसरा प्रगट है, त्रिकाली प्रगट नहीं है, ये प्रगट है, अनुमान करना पड़ता
नहीं है, ये संवेद्यमान.
इसमें थोड़ा बहुत बात बड़ा है, बात ज्यादा है, उसमें फ्लो थोड़ा आता है, लेकिन वो फ्लो में आधा घंटा निकल जाना लीजिए, बात बहुत है उसमें.
જય દેવ અને શક્તિ શક્તિ